وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا، ہم نے تمہیں امتِ وسط بنا دیا، کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، کون؟ مسلمان، تم مسلمان ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہی دو، یہ کون سی گواہی ہے؟ دنیا میں شہادت حق کی گواہی، تبلیغ کی گواہی، اسلام وہاں تک پہنچانے کی بات، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اس وقت اس بات کو سن رہے ہیں، پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، تاکہ شہداء علی الناس، پوچھا بھی جائے نا کہ عبادت کے نام پہ کیا بھیجا گیا تو کہتے ہیں جی عبادت کے لیے بھیجا گیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورہ زاریات کی آیت کوٹ کرتے ہیں، وہ تو انسانیت کی بات ہے، لیکن مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ ہم دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، کسی کو اس چیز کی طرف بلانے کے لیے شرط کیا ہوتی ہے، ہمیں خود تو پتہ ہو، چلیں یہاں اپنے سے ہم سوال کر لیتے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہے؟ کیا ہمیں اسلام کی اتنی معلومات ہیں کہ دوسروں کو دے سکیں؟ اور پتہ ہے تبلیغ کرنے کا طریقہ کہ پہلے کون سی بات کرنی ہے اور دوسری بات میں کون سی کرنی ہے؟ آپ اپنے 10-12 سال کے بچے کو جا کے پوچھ لیجئے گا کہ بتاؤ بیٹا مسلمان ہونے کے ناطے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہے گا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حالانکہ یہ مقصد نہیں تھے، یہ مقصد تک پہنچنے کے ٹولز تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو 5 وقت کی نماز اور عبادات ہے نا، یہ ٹریننگ ہے، جیسے فوج کو دشمن سے لڑنے سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، گرمی سردی کا اس کو فرق رکھا جاتا ہے کہ برداشت پیدا ہو، لیکن اصل کام کیا ہوتا ہے کہ جب دشمن سامنے آ جائے تو مقابلہ کرو، اور اگر صرف ٹریننگ دیتے رہیں اور مقابلے پہ نہ لے جائیں تو مقصد حل ہوگا؟ دیکھیے مثال دیتی ہوں آپ کو چھوٹی سی، کہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے، لیکن گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ چاہے سڑک پہ نکلے، آپ کے کام کرے، آپ کو کہیں لے جائے، آپ کو کہیں آنا ہے جانا ہے، وہ چھوڑ دے، ہاں اس کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے اندر آئل ڈالیں، اس کے اندر پانی چیک کریں، اس کی صفائی کریں، آپ صبح اٹھ کے گاڑی کے اندر گیس ڈالیں اور اس کو آن کر دیں، چلے وہ خوب گاڑی گرم ہوگی، اب کیا کریں، گیس ختم ہو جائے پھر اور ڈال دیں، تھوڑی دیر بعد پھر اور ڈال دیں، اور سارا دن گاڑی آپ کے گیرج میں کھڑی جلتی رہے، کیا ہوگا؟ جل جائے گی نا، وہ گاڑی کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کو روڈ پہ نکالیں، وہ چلے، وہ کہیں ادھر ادھر بھاگے دوڑے، خالی گاڑی تو جل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم مسلمان ہیں، یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ گیس ڈلتی ہے، گیس سے مراد جو بھی پیٹرول کہتے ہیں آپ لوگ، گاڑی میں جو پیٹرول ڈلتا ہے یا جو بھی اس کا ایندھن ڈالتے ہیں، ہم نمازوں کی اور عبادات کی صورت میں ایک ایندھن لیتے ہیں، انرجی ملتی ہے، لیکن اس انرجی کا اظہار کہاں ملے گا؟ چلتے پھرتے دنیا میں اسلام کو پھیلا کر، ہم عبادت کر کر کے اتنے موٹے ہو چکے ہوتے ہیں اندر سے، اتنے انرجیٹک ہو چکے ہوتے ہیں کہ بس وہ خود ہی جل جاتے ہیں، جیسے کھڑی گاڑی اپنی جگہ پہ جلتی ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوگا، یہ کہاں ہوگا؟ یہ قیامت کے دن ہوگا، صحیح روایات میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بلائیں گے، حضرت نوح سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے پیغمبروں کو، اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ بھائی تمہیں جو میں نے کام دیا تھا وہ کرائے، وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا جائے گا، اسی لیے حجت الوداع کے موقع پہ آپ بڑے اس چیز کے لیے کیئرفل تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیے، حل بلغتا، کیا میں نے پہنچا دیے، صحابہ نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا اور آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، تو پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ گواہ رہنا، اتنا غم تھا اللہ کے نبی کو اس گواہی کا، آگے آپ پڑھیں گے سورۃ نساء کی ایک آیت پڑھتے ہوئے ساری رات آپ روتے رہے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، صحابی آپ کو سورۃ نساء سنا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اور کہا بس بس اب رک جاؤ، اور وہ کون سی آیت تھی کہ نبی یاد کیجیے اس دن کیا ہوگا جس دن قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے حق ادا کر دیا تھا، امت کو بتا دیا، تو آپ رو رو کے حال آپ کا ایسے ہو رہا تھا کہ میں نے پتہ نہیں حق ادا کیا کہ نہیں کیا. اب اس وقت انبیاء کرام کہہ دیں گے یہ کیا, پھر اس کے بعد ان کی قوموں کو بلایا جائے گا, قوم نوح کو بلایا جائے گا. اچھا جی بتائیے کیا حضرت نوح آئے تھے, پیغام دیا تھا؟ کہیں گے نہیں بالکل نہیں آئے. صاف مکر جائیں گی قومیں. جو دنیا میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ وہاں بھی جھوٹ بولے گا. ہوگا کیا کہ ساری قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلا دیں گی کہ ہمیں تو نہ کسی نے بتایا اور نہ ہم سنیں. اب نبیوں کی ذرا پوزیشن دیکھیے, بھری عدالت میں کوئی ایسی گواہی دے دے اب کیا کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کہیں گے کہ اپنے گواہ پیش کرو, اگر واقعی تم نے پیغام دیا تھا تو گواہ پیش کرو. اب گواہی کے لیے امت مسلمہ کو لایا جائے گا, یہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو پکارتے رہے, لیکن یہ مانے ہی نہیں. نہ قومیں کہیں گی بھائی تم کیسے گواہی دے رہی ہو, تم تو ہمارے دور میں تھی نہیں, تم تو اتنے بعد آئے. تو وہ کہیں گے امت مسلمہ کے لوگ کہ ہم نے یہ بات اپنی کتاب میں پڑھی تھی, یعنی علم کی بنیاد پہ گواہی دیں گے. اور جنہوں نے پڑھی نہیں وہ پتہ نہیں وہاں کیا دیں گے. اس بنیاد پہ پھر اللہ تعالیٰ امت کی گواہی لے کر نبیوں کی بات کو مانیں گے. یہ ہے وہ آنر جو میدان محشر میں امت مسلمہ کو ملنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ قیامت کے میدان میں اونچے ٹیلوں پہ کھڑی ہوگی, یعنی ان کی بڑی پرومیننٹ ریک ہوگا, جیسے ہائی ڈیسک پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ. باقی امتیں نیچے ہوں گی, یہ اوپر ہوگی. لیکن کیا یہ سارے اعزاز اور آنر ایسے مل جاتے ہیں؟ اگر دنیا میں ہم نے یہ گواہی نہیں دی, ہم نے تو ابھی مسلمانوں تک نہیں پیغام پہنچایا, نان مسلم کو کہاں پہنچائیں گے؟ آپ سوچئے اس پہ, آج غور کیجئے گا بعد میں. اور اللہ نہ کرے اگر ہم اس بات کے جاننے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہوتے تو پتہ نہیں وہاں کتنے سٹ پٹائے رہتے کہ ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں کہ تم نے گواہی بھی دینی ہے. کیونکہ دیکھیے گواہی دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, مجرموں کے سامنے جا کے ان کو جھٹلا دینا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے قبلے کی بات کے بیچ میں یہ آنر مسلمانوں کو دے دیا کہ دیکھو ہم تمہیں ایسے ہی نہیں کہہ رہے, تمہیں ایک عزت دی جا رہی ہے, اب تم ایک اعلیٰ مقام پہ قائم ہو رہے ہو, اس لیے یہ کام تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہود کو مسلمانوں پر 3 چیزوں میں حسد ہے. ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس امت کا یہ قبلہ ہوگا. مسند احمد کی یہ روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں پر ہے. ایک, جمعے کے دن کی عبادت پہ, کہ یہ جمعے کے دن عبادت کیوں کرتے ہیں, اور ان کو تو انہوں نے ہفتے کا دن لے لیا تھا اور اصل میں اللہ کے پاس وہ جمعے کا دن تھا جو مسلمانوں کو مل گیا. دوسرا, ان کو مسلمانوں کے قبلے پہ حسد ہے کہ خانہ کعبہ کیوں ہے ان کا قبلہ, جو قبلہ تبدیل ہو گیا تھا. تیسری بات, ان کو امام کے پیچھے آمین کہنے والے لوگوں پہ حسد ہے. آپ کو پتہ نا کہ جاہری نمازوں میں جب سورہ فاتحہ کے بعد امام آمین کہتا ہے تو پیچھے مقتدی بھی آمین کہتے ہیں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کی قبول ہو گئی. اور یہود کو اس پہ حسد ہے. اور میں سوچتی ہوں ساری نماز کو چھوڑ کے اس مسئلے کو مختلف ہی مسئلہ بنا دیا کہ جی امام کے پیچھے آمین نہیں کہنا, کون خوش ہوتے ہوں گے ہماری اس بات سے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اور وہ وجہ ہے اس کی. اصل وجہ یہ کہ شیطان چاہتے نہیں ہیں کہ دوسرے ہماری اس چیز پہ یعنی خوش ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس بات میں مسلمانوں کو بتا کے اصل پیغام دینے کے بعد اب آگے آتا ہے دوبارہ قبلے کی تبدیلی کا حکم. آپ دیکھیں گے مسلسل 2 رکوع میں ایک ہی بات کی تکرار ہے جو اصل میں بڑی میننگ فل ہے. فرمائے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا. یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم ہم نے آپ کو کیوں دیا, اس کی وجوہات کیا ہے؟ الا مگر یہ کہ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ, تاکہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے رسول کی. کس طرح سے؟ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, کون اپنی ایڑیوں سے پلٹ جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً, اور بے شک یہ بات بڑی بھاری ہوتی ہے. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, مگر ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہدایت دی. وما کان اللہ لیدیع ایمانکم, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اس آیت میں किबले की तब्दीली की हिकमतें बताई जा रही हैं। तीन बड़ी हिकमतें थी किबले की तब्दीली का हुक्म देने की। पहली बात क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि खाना काबा किबला बन जाए। अल्लाह के हुक्म की वजह से आपने बैतुल मक़दस की तरफ मुंह किया हुआ था। अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की ये ख्वाहिश पूरी की। ये पहली वजह थी। दूसरी वजह थी अल्लाह ताला यहूद और मुनाफिकों की हालत को जाहिर करना चाहता था। लिनालम मैयत्तबिर्रसूल, अल्लाह ताला देखना चाहते थे कि कौन रसूल की तबाह करता है। देखिए आसान बात नहीं है। नमाज के दौरान हुक्म आया, आप आज के दौर में ज़रा तसव्वुर तो करें, लोग नमाज तोड़ के ना लड़ने शुरू हो जाते, झगड़े शुरू हो जाते कि ये क्या कह रहे हो, और तुम्हारी और मस्जिद हमारी और मस्जिद। और आज भी वो मस्जिद इस बात की गवाह है। अगर आपको अल्लाह ताला ले जाए मक्का में तो जाके देखिए, मदीना के करीब, मदीना के बिल्कुल मतलब तो ज़ाहिर उसी शहर के अंदर है, वो जगह मौजूद है कि जहाँ ये मामला पेश आया था। मस्जिद किबलतैन उसको कहते हैं, और उसके दो मिंबर हैं, यानी एक मशरक़ की तरफ और एक मग़रिब की तरफ है, एक जिसमें पहले पढ़ रहे थे और दूसरे में दूसरी तरफ गए। अल्लाह ताला देखना चाहता था कि कौन किस हालत में है, दिलों के निफाक खुलने थे। और जब भी ऐसे तब्दीलियां आती है ना, तो लोग खुल के सामने आते हैं। हर चीज़ आम हालात में चलती रहती है ना, लगता है आपके सारे साथी हैं, सब मुखलिस हैं, वेरी सिंसियर, फिर अल्लाह ताला माफ़ करे, महफूज रखे फितनों से और आजमाइशों से। लेकिन जो ही कोई आजमाइश आती है ना उस इंसान पे, उस इदारे पे, उस गिरोह पे, तो उस वक्त लोग छटने लगते हैं। अच्छा नहीं, हम तो पीछे ही हो जाएं तो बेहतर है। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि तेल देखो, तेल की धार देखो, फिर बाज़ लोग कुछ और भी कहते हैं। मेरे ज़हन में एक बहुत ही एक मुहावरा सा आ रहा है लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा, कि बाज़ लोग होते हैं ना वो घूम जाते हैं, जैसे लोटा घूमता है ऐसे लोग भी घूम जाते हैं, जिसका पल्ला भारी उसके साथ सारे, देखो ऊँट किस करवट बैठता है। कुछ लोग जो साथ रहने वाले होते हैं, बहुत साथी होते हैं, वो ऐसे लगता है कि उस काम का एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन दिल में कहीं खोट होता है, या कुछ नीयत में खराबी है, या ईमान की कमी है, या आजमाइश कह लें। ऐसे वक्तों में वो छट जाते हैं। जब भी फितना आता है ना, उसके बहुत बड़े फायदे होते हैं कि आपके इर्द गिर्द से गंदे और कच्चे चीज़ें छटती हैं। आप कभी किसी बाली से पूछें कि जब आम लगता है ना, आम से पहले बूर लगता है, तो आंधियां चलती हैं, तो वो केरियां जो दीमक ज़्यादा होती है ना उतर जाती हैं। कच्चे फल यानी वो क्यों झड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े होके भी ख़राब ही बनना था। इसी तरह दीन के फितनों के दौर में जो कमज़ोर लोग या निफाक वाले लोग होते हैं ना, वो छट जाते हैं, उनका ईमान पहले से भी बिगड़ जाता है। अल्लाह ताला ये जाहिर करना चाहता था। अब आप कहें कि लीना लमा का लफ्ज़ है, और इसका तो कि अल्लाह को पहले नहीं पता था, और बाज़ लोगों ने इससे ये बात निकाली नऊज़ु बिल्लाह कि जब तक कोई काम हो नहीं जाता, अल्लाह को भी उसके बारे में पता नहीं चलता। हालांकि याद रखिए, दो तरह का इल्म होता है। एक होता है इल्मे गैब, छुपा हुआ वक्त नहीं पता भी क्या है, और दूसरा होता है इल्मे ज़हूर, ज़हूर ज़ाहिर से। इल्मे गैब अल्लाह को हर वक्त है, उसको पता है कि कल कोई क्या करेगा, लेकिन अल्लाह उसको जाहिर करके दूसरों को दिखाता है। मसलन आप देखिए कि जैसे कोई कपड़े रंगने वाला शख्स है ना, उसको पता है कि जब मैं ये नीला और सब्ज़ रंग जो दोनों को जमा करके मिला के करूँगा तो ये पीला रंग बन जाएगा, या नीला और पीला जमा करूँगा तो सब्ज़ बन जाएगा, उसको पहले ही पता है। लेकिन किसी को अगर यकीन ना हो ना, तो वो उसके सामने करके दिखाता है, तो आप कहते हैं हाँ अब पता चला। प्रैक्टिकल जो होते हैं, आप सारा दिन इसी बात की बातें करते हैं, आपको बहुत बातों का यकीन होता है, लेकिन आपके बच्चों को नहीं आता यकीन, तो आप उनको करके दिखाते हैं कि देखो फिर ये हुआ ना। अल्लाह ताला को इल्मे गैब भी है, लेकिन लोगों के यकीन को बढ़ाने के लिए उसको ज़हूर में लाता है। तो लीना लमा का लफ्ज़ अल्लाह के जानने से नहीं है, हमारे जानने से है। हुज्जत तमाम हो जाए, अल्लाह दिखा दे, वरना कल किसने मानना था। बिलफर्ज ये किबले की तब्दीली का हुक्म ना आता, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन लोगों को अलग कर देता जो इस मौके पे मुर्तद हो गए थे, कि फरिश्तों इनको आग में डाल दो, क्योंकि इन्होंने अगर ये हुक्म दिया जाता तो मुर्तद हो जाना था। तो आप बताइए कोई मानता? उन्होंने कहना था अल्लाह ताला नहीं, तू कैसे कह सकता है, हमें करके दिखा, हमें पता चले। आज भी दुनिया में बहुत सारे दावे कर रहे होते हैं, एक दफा मौका मिले फिर करके दिखाएंगे, और फिर मौका मिल जाता है तो हम खिसक जाते हैं। बातें करते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं, और जो ही कोई अमली कुर्बानी देनी पड़ती है तो हम इधर उधर देखने लगते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जाहिर करना चाहता था मैं लोगों को, ये दूसरा मकसद था, और जाहिर होना बड़ा लाजमी होता है। देखिए बाज़ दफ़ा वो जो खोटे लोग होते हैं ना, वही आपके नुकसान का जरिया बनते हैं। कुछ ऐसे गजवात हुए थे कि जिसमें कुछ लोग बिल्कुल खुल के सामने आ गए। गजवे उहद में 300 के करीब लोग अब्दुल्ला बिन उबई के साथ अलग हुए, तो अल्लाह ताला नबी को तसल्ली दे रहे हैं कि गम ना करो, ये अगर तुम्हारे साथ जाते भी तो ये फितने ही पैदा करते। इन्होंने वादा के हिम्मत तोड़ने ली बातें ही करनी थी। और आप नोट करें, कुछ लोगों के मिजाज में होती नेगेटिविटी है, वो हमेशा बात करेंगे तो हिम्मत तोड़ने ली करेंगे, आपको हरास ही डालेंगे, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है, ये नहीं होगा, वो नहीं, यानी हमेशा तस्वीर का काला रंग देखते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनको अलग करना था। तीसरी चीज़, जो तीसरी हिकमत थी, वो क्या थी कि अल्लाह ताला ये जाहिर करवाना चाहता था कि असल अहमियत जगह की नहीं होती, असल बात अल्लाह का हुक्म है। तुम्हारी छोटी सी अक्लों में हुक्म की हिकमत समझ आती है, तुम्हें हिकमत समझ आती है या नहीं आती, बस घूम जाओ, बस मिमयन कलीबू अलाकिबे, अपनी एड़ियों पे पलटो। और हकीकत में एड़ियों पे पलटे थे, क्योंकि किबले की तब्दीली में लिटरली ये बात हो के रही थी, कौन है जो ऐसे वक्त में पूछे क्यों, वाय हिकमत, वजह अभी क्यों, कल तक जो पढ़ी उनका क्या हुआ, नहीं बस घूम जाओ। अल्लाह के नबी ने जो तज़किया किया था ना अपने साथियों का, ये उसका नतीजा था कि दौराने नमाज भी घूम गए तो किसी ने क्यों कहा नहीं की, क्योंकि उनके दिल झुक चुके थे। और ईमान वाले का दिल एक कंपस की तरह होता है, अल्लाह की मोहब्बत को सामने रख के वो घूम जाता है जिधर भी होता है, और ये अमल बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहा वइन कानत लकबीरतन, ये बहुत मुश्किल है, लकबीरतन बड़ा मुश्किल काम है। हाँ मगर किस पे आसान है, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्ला, मगर जिनको अल्लाह राह दिखा दे। पता क्या चला, उन लोगों की तारीफ की गई जिन्होंने इस बात को मान लिया। आज जरा हम अपने आप को चेक करें, देखिए जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो दर हकीकत हमारे किबले बदलते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी के किबले बदल रहे हैं, तरजीहात बदल रही हैं, सोच बदल रही है। ये जो तरजीहात बदलना होता है ना, ये भी असल में आपके इर्द गिर्द, आपके खानदानों और आपके इर्द गिर्द वालों में ऐसे ही तूफान पैदा करेगा जैसे उस दौर में हुए थे। तो अल्लाह ताला आपको तरीका सिखा रहे हैं कि आपने कैसे करना है, उलझना नहीं, झगड़ना नहीं, अपने आप को संवारना है, अपने अंदर इस हुक्म की हिकमत को लगाना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उससे बात को वाज़े कर देंगे। फिर क्या हुआ, वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीन हदल्ला। हाँ एक सवाल उठा लोगों के जहनों में, यह हुक्म हो गया, मान गए, बाद में अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए और कहने लगे कि वो लोग ये जो पिछले 16-17 महीने के दौरान फौत हो गए और बैतुल मक़दस की तरफ मुँह कर रहे थे, उनकी नमाजों का क्या होगा। ऐसे ही ना जैसे आज किसी को सही सुन्नत तरीके से नमाज पढ़ने का तरीका पता चले, तो सवाल आता है कि अच्छा जो पिछली ज़िंदगी की नमाजें हमने पढ़ी थी उनका क्या होगा। ये काम सवाल है, ये सवाल सहाबे कराम के दिल में उठा था, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में बता दिया, वमा कान अल्लाहु लियुदीया ईमानकुम, फिक्र ना करो अल्लाह तुम्हारे ईमान ज़ाया नहीं करेगा। यहाँ देखिए नमाज को ईमान कहा गया है, ये नमाज की अहमियत के लिए एक बहुत ही अहम पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं कि ये कहने की बजाय कि वमा कान अल्लाहु लियुदीया सलातकुम ईमानकुम कहा, क्यों कहा। पहली वजह इसकी यह है कि नमाज की अहमियत बढ़ाने के लिए, दूसरी इसकी वजह क्या है, कुल बोलकर जुज़ मुराद लिया गया। कुल क्या होता है, कंप्लीट, कोई चीज़ होती है ना मुकम्मल, फिर उसका जुज़ बोल दिया जाता है। मसलन जैसे दरख्त है ना, तो उसमें पत्ते भी हैं, जड़ें भी हैं, टहनियाँ भी हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा दरख्त बोल के उससे सिर्फ पत्ता मुराद लिया जाता है, ठीक है। और ऐसा बहुत जगह हुआ, कहीं सिर्फ रुकू को नमाज कहा गया, आगे आएगा, तो यहाँ ये बात पता चली। तीसरी एक और वजह भी है कि नमाज ईमान की शाख है। अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस है कि अल ईमान बिदा व सबून शोबा, ईमान की 70 से कुछ ऊपर शाखें हैं और उनमें से एक शाख नमाज पढ़ना है। तो जो अमल साले होते हैं ना, ये भी ईमान का हिस्सा होते हैं। तो बहरहाल अगर नमाज की अहमियत पे कोई और बात ना भी मिले ना, तो सिर्फ ये एक नुक्ता आप नोट कर सकते हैं कि नमाज नहीं है तो दीन भी नहीं है। कुफर और इस्लाम के बीच में हद फासल नमाज है। ईमान वाला नमाज पढ़ता है, काफिर नहीं पढ़ता। अल्लाह ने यह हुक्म बता दिया, कोई बात नहीं, जो उस हुक्म के नाजिल होने से पहले चले गए तो अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा, और अल्लाह ताला ऐसा करता ही नहीं। और ये जो लकबीरतन से पहले लाम है ना, ये ताकीद का है, यानी ये बहुत भारी है। बात सुन के मानना ही तो असल में सबसे भारी है। और अल्लाह ताला जो है ईमान को ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि इन अल्लाह बिन नासि लरऊफ और रहीम, अल्लाह ताला लोगों के साथ बहुत शफकत करने वाले और मेहरबान है। ये सिफात क्यों आई इधर? यहाँ तो एक इम्तिहान है। किबले की तब्दीली को छोटी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ लरऊफ और रहीम कह के बता दिया कि उम्मते मुस्लिमा का किबला बदलना अल्लाह की शफकत थी। क्यों? अहले किताब की किताबों में ये बात लिखी हुई थी, आखिरी नबी और उसकी उम्मत का किबला खाना काबा होगा। जब किबले की तब्दीली का हुक्म आया तो यहूद को कचोका लगा था। उनके दिलों ने एक बार फिर यह आवाज़ दी थी कि नबी सच्चा है, क्योंकि बात वही हो गई जो कि हमारी किताबों में लिखी थी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता के उम्मत मुस्लिमा को बता दिया कि ये तुम पे अल्लाह की रहमत और शफकत है कि उसने तुमको उस उम्मत में पैदा किया जिसको अल्लाह ताला ने ये एजाज़ अता किया हुआ है कि वो किस तरीके से मामला करते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि ये बातें जो हो गई, कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सारी बातें हमारे सामने रखी, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम इसका आगे आयतों को लेते हैं, लेकिन कुछ मसाइल इनमें और भी मिलते हैं जो इंशाल्लाह हम बाद में खुलासे में करेंगे। अब यहाँ अगली आयत में अल्लाह ताला उस कैफियत का इजहार करते हैं जो नबी सल्लम की थी। क्या? कब थी? किबले की तब्दीली का हुक्म आने से पहले। क्या? कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस्समा, बेशक हम देखते हैं आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना। ये कब था? 16 माह के अंदर अंदर, जब आप बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे होते थे, पढ़ते थे, तो उस दौरान आपकी ख्वाहिश थी बड़ी कि किबला तब्दील हो जाए। तो उम्मीद के साथ आप ऊपर देखते थे, दुआ मांगते थे कि अल्लाह वो हुक्म आ जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हम देख रहे होते हैं। इससे क्या पता चलता है कि आसमान की तरफ देखा जा सकता है? तो गौर व फिक्र करते हुए भी आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कितना प्यारा आसमान बनाया है, और इसकी दावत सूरत मुल्क में भी मिलती है। इसी तरह दुआ करते हुए भी आप देख सकते हैं, लेकिन नमाज के अंदर ऊपर नहीं देख सकते। हुक्म है इंसान अपनी निगाहों को झुकाए, सजदे की जगह पे देखना पसंदीदा है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई देखे तो बस इमाम को देख सकता है, यानी अपने से अगली सफ जो है उसके अंदर देख सकता है, लेकिन बिल्कुल ऊपर देखना, इधर उधर देखना पसंदीदा नहीं। नबी सल्लम ने फरमाया कि उसकी निगाहें उचक ली जा सकती हैं कि जो नमाज में ऊपर देखे। बेअदबी की भी तो बात है ना। अब देखिए, जब निगाहें झुकी होती हैं ना, तो उससे इंसान की एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर सामने आती है, भोलपन आता है, मासूमियत आती है। और जो अंदर दिल में कोई अदब तह नहीं रखते, या अल्लाह ताला के लिए उनके दिल में वो जगह नहीं होती, तो वो फिर अपने चेहरे और अपने पोस्चर से भी यही साबित करते हैं। लेकिन इससे एक और बात भी पता चली कि अल्लाह की ज़ात आसमान पे है। रब है ही वो जो आसमान पे हो। लोगों ने ज़मीन पे रब ढूंढने चाहे, जितनी बुत परस्ती है, जितना शिर्क है, वो ज़मीन पे तो क्या, कुछ तो ज़मीन के अंदर सोए हुए या मुर्दा बेचारों को खुदा बनाते हैं, तो रब आसमान पे है। एक मौके पे एक लौंडी थी, तो उसको आज़ाद करने की बात हुई, तो कहा कैसे पता चले कि वो मुसलमान है कि नहीं। तो जब उसको बुलाया गया तो उससे पूछा गया कि बता तेरा अल्लाह के बारे में क्या अकीदा है, तो कहने लगी वो एक है। कहा किधर है? कहा आसमान पे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये मोमिना है, इसको आज़ाद कर दो। यानी इस गवाही पे कि कोई ये कहता है कि अल्लाह की ज़ात आसमान पे, उसका इस्लाम जो है वो तस्लीम किया जाता है। तो लिहाजा एक साइड पॉइंट है ये कि अल्लाह की ज़ात आसमान पे है। फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा, पसंद करीब हम फेर देंगे आपको उस किबले की तरफ जिसे आप पसंद करते हैं। कौन सा? बैतुल्ला। अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि आप गम ना करें, हमें पता है कि आपका दिल चाहता है कि आप दोबारा वही किबला आ जाए, तो हम आपको देंगे, लेकिन अभी इंतज़ार करें। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला को नबी सल्लम की भी हर हालत की खबर होती थी, और आज हम भी दिलों में जो ख्वाहिशात और तमन्नाएं रखते हैं अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। अब आता है असल हुक्म, आप हाईलाइट कर लीजिएगा, किबले की तब्दीली का हुक्म किन लफ्ज़ों से आया? फवल्ली वजह का, बस फेर लें अपना चेहरा। और वल्ली का लफ्ज़ है ना, ये वाहिद है, सिर्फ नबी सल्लम को कहा गया। इधर 3 दफ़ा आगे आ रहा है, आगे और भी आएगा, लेकिन पहली दफ़ा आया फवल्ली, वाहिद है, ए नबी आप बदल लें। ये थे वो लफ्ज़ जिसके बाद फिर किबला तब्दील हुआ था, लेकिन पिछले लफ्ज़ नहीं है कि बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करो, वो हदीस से साबित होते हैं। और उसी से हदीस की अहमियत भी हमें समझ में आती है कि कुछ हुक्म जो होते हैं वो कुरान की बजाय हदीस से भी साबित हो जाते हैं। क्या कहा? अपने चेहरे को बदलो, किधर? शत्रुल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। अच्छा, अब शत्र को समझ लेते हैं, तो कई मसलों का इंशाल्लाह इसमें भी जवाब आएगा। शत्र कहते हैं सेमी हाफ को, जैसे रोटी को तोड़ के आधी करें ना, तो हर आधा हिस्सा दूसरे का शत्र है। आधा, जैसे आप गोल दायरे को काटें 2 हिस्सों में, तो हर आधी चीज़ दूसरे का शत्र है। अब ये देखिए कितनी वुस्सत है। आप इसको यूं सोचें जैसे ग्लोब है, पूरे ग्लोब को अगर आप आधा काटें तो शतर में कितनी गुंजाइश बन गई कि ये पेन है ना, तो बस ये एक डायरेक्शन है और ये किबला है, सिर्फ एक है। और इसकी बजाय क्या कहा जा रहा है? ये देखिए, ये सारा शतर है। क्या पता चला इससे? दीन की वुस्सत। अगर एक लाइन खींच के कहा जाता है ना कि बस ये किबला है, सारी दुनिया के मुसलमान जो ग्लोब में है उसको खाना काबा से यूं मैच करें, कितना मुश्किल हो जाता, इंतहाई मुश्किल होता। बल्कि खाना काबा में जो लोग इबादत कर रहे होते उनके लिए मुश्किल होता। अल्लाह ताला ने इतनी सहूलत पैदा कर दी कि इस पूरे शतर के अंदर अगर तुम यूं कर रहे हो, यूं कर रहे हो, यूं कर रहे हो, यूं, बस इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी आप US से, कनाडा से हैं, तो नॉर्थ ईस्ट, बस पूरे नॉर्थ ईस्ट में किसी के इधर भी है। इससे क्या पता चलता है कि किबले की तरफ मुंह किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। 19-20 का फर्क रह गया तो खैर है, शतर में वुस्सत पाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जब से दीन के नाम से शिद्दत पसंदी आ गई, लोगों ने इसमें ही झगड़ना शुरू कर दिया कि किबला इधर क्यों था और उधर क्यों था, और असल नमाज का खुशू कम हो गया। कोशिश की जाएगी और इसके मसाइल आगे इंशाल्लाह मौका मिला तो एंड पे बात कर लेंगे, लेकिन किबला फ़र्ज़ है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। आम हालात की ये बात है, इंसान को ना पता हो, इज्तिहाद करेगा, पूरी कोशिश करे, फिर उसके बाद जिधर उसको लगे दुरुस्त जगह उस तरफ वो नमाज़ पढ़ ले। अगर नमाज पढ़ ली बाद में पता चला कि किबला ऐसा नहीं था वैसा था, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, क्योंकि लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। नमाज पढ़ने के दौरान किसी ने आके बता दिया कि ये दुरुस्त नहीं, तो आप भी किबला बदल लें, फिर किबला तयीन हो जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें, किबला फ़र्ज़ है, लाजिम है, आम हालात में इसको देखा जाएगा, ढूंढा जाएगा, और अगर उसमें गलती हो जाए नमाज के दौरान भी है तो अपना रुख बदल लिया जाएगा। नमाज पूरी पढ़ ली जाए बाद में पता चले तो आइंदा अगली नमाजें ठीक तरफ पढ़ ली जाएंगी। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पता ना चल सके तो फिर अपनी कोशिश से ढूंढ लिया जाए, फिर उस पर पढ़ा जाए, और अल्लाह चाहे तो वो ठीक भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। बाकी रहेगी नफिल नमाज, तो उसमें रुख्सत है कि कोशिश कर लें, नहीं तो चलती सवारी पे भी अल्लाह के नबी सल्लम नफिल अदा किया करते थे। पहला हुक्म नबी सल्लम को आया, फरमाए वा हैसु मा कुंतुम, और जहाँ कहीं तुम हो। यहाँ अगर आप लोग थोड़ी सी ग्रामर को देख लें तो यहाँ जमा के अब सीखे आ रहे हैं। फवल्लू, पहले वल्ली और वल्लू में किस चीज़ का फ़र्क है? वॉ लगी हुई है ना, तो अब यहाँ उम्मत को हुक्म दिया जा रहा है। पहला हुक्म सिर्फ नबी सल्लम को था वल्ली, और अब क्या कहा जा रहा? फवल्लू वजूह हकुम शत्रा, वहाँ वज था, वज वाहिद होता है और वजूह जमा होता है, कि पहले नबी को कहा कि आप ये रुख बदल लें। कोई सोचे सिर्फ नबी का किबला बदला है, नहीं, अब तुम सब भी बदल लो उसी तरफ। इन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब, और बेशक वो लोग जो किताब दिए गए, लयालमूना, अलबत्ता वो जानते हैं, अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम, कि वो हक है उनके रब की तरफ से। क्या चीज़? किबला। उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था कि इस नबी का किबला खाना काबा होगा, और उनको ये बात पता थी, और आज उनको एक दफ़ा और यकीन आ गया कि अल्लाह के नबी सल्लम सच्चे नबी हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं जो कुछ ये कर रहे हैं। वो क्या कर रहे थे, जानते बूझते मानने की बजाय फिर उन्हीं बातों में पड़ गए जो कि इसमें इख्तलाफ पैदा करने वाली थी। अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी को तो पता था कि अहले किताब को पता है ये बात कि इनका किबला बैतुल्ला है, तो जूं ही ये निशानी सामने आई फिर आपके दिल में ख्वाहिश आई, क्या भला कि आप तो ये ज़रूर ही मुझे मान लेंगे। आपको याद है कि जब गाय के वाक़े में हमने ये बात पढ़ी थी कि नबी सल्लम की ज़ुबान से ये सारा वाक़या सुना, तो अल्लाह के नबी के दिल में फिर ख्वाहिश पैदा हुई थी कि अल्लाह ताला अब तो ये मान जाएंगे कि इनको मैं इनके वाक़े सुना रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अफतत माओना, क्या तुम ये तमा रखते हो कि ये तुम पर ईमान ले आएंगे। अब यहाँ फिर एक बार अल्लाह के नबी के दिल में ख्वाहिश आती है कि बस अब तो ये मान ही जाएंगे। देखिए कुछ लोगों के लिए इंसान तड़पता है ना, कहते हैं हाय अब तो इनका दिल खुल ही जाएगा, देखना अब तो इनको इतनी अच्छी बात पता चल गई, अब तो इन्होंने थोड़ा सा सुन भी लिया है। लेकिन वलाइन अतही तल्लसी न ऊतुल किताब बिकुल्ली आयतन, ए नबी अगर आप इन अहले किताब को हर निशानी भी दिखा दें मा तभी वो किबला तक, ये नहीं मानेंगे आपके किबले को। क्योंकि जिनको नहीं मानना होता ना नहीं मानते, तो उनके ना मानने की वजह जहालत थी, नहीं उनके ना मानने की वजह तासुब था। जब हट धर्मी जिद और तासुब आ जाता है ना, तो फिर बंदा दलाइल भी नहीं मानता, बड़ी बड़ी निशानियों को देख के भी नहीं मानता। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये नहीं मानेंगे क्योंकि इनका मसला लाइल्मी नहीं है, इनका मसला कुछ और है, तो लिहाजा अब ये नहीं मान रहे तो अब आप इनकी मान लें, हरगिज़ नहीं। वमान तबिताब इन क़िबलत हम, अब आप ना इनकी मानने लगें, आप इनके लिए अपने असूलों को कम ना कर दें कि अच्छा अब ये मेरी नहीं मानते तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ का और इत्तेहाद का और यूनिटी का यही तकाजा है कि फिर मैं इनकी मान लूँ, जो आज के दौर में बहुत सारे मुसलमानों ने सोच लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं किसी एक दीन पे जमा हो जाते हैं, ये हमारे पे नहीं होते हम इन पे हो जाएं। कहा नहीं, वमान तबिताबिन, आप नहीं पैरवी करेंगे इनके किबलाते की किबले की, बल्कि आपके किबले की तो ये क्या पैरवी करेंगे। वमा बादुहुम बिताबिन किबलत बाद, इनमें से तो बास दूसरे की भी किबले की पैरवी नहीं करते, यानी ये मुसलमानों के किबले की पैरवी कहाँ करेंगे, ये यहूद और नसारा तो आपस में भी एक दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करते। यहाँ बादहुम और बादहुम से मुराद क्या है, यहूद और नसारा, क्यों कि बज़ाहर ये दोनों जो है ना ये बैतुल मक़दस की तरफ मुकर के इबादत करते हैं, लेकिन यहूद जो हैं वो सखर की तरफ इबादत करते हैं। सखरा एक पत्थर है जिसकी साथ नबी सल्लम ने भी अपने जानवर को बांधा था। और नसारा जो है वो मशरक़ की सूरत में करते हैं, यानी नसारा मशरक़ की तरफ मुँह करते हैं और यहूद जो है ये मगरबी सूरत में करते हैं, एक ही किबले के दो मुख्तलिफ एंगल्स में करते हैं, तो फिर ये आपके किबले को कहाँ मानेंगे। इशारा ये कि इनके तो आपस में भी बड़े इख्तलाफ हैं, तुम्हें कहाँ ये एक ले जाएंगे, तुम्हारी बात कहाँ मानेंगे। वलैन इत्तबअत अहवाहुम मिन बादि मा जाअका मिनल इल्मि, हाँ अगर आप इनकी बातों की इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे इल्म के आ जाने के बाद, इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो आप बहुत ज़ालिमों में से हो जाएंगे बेशक। यानी कल तक बात और थी, मुझे तो लग रहा है ये अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि बात सीखने सुनने के बाद इल्म आने के बाद ज़िंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। अगर इल्म पाने के बाद भी बंदा वही कुछ करने लगे जो इल्म से पहले था, तो फिर समझो कि फ़र्क क्या रहा, तब्दीली आती है इल्म के बाद और आनी चाहिए। कहा अल्लाह के नबी को जा रहा है लेकिन सुनाया उम्मत को जा रहा है कि अब आपने इनकी बातें नहीं माननी क्योंकि आपके पास इल्म आ गया, और बाकी रह गई बात कि ये भोले नहीं है, असल बात ये है कि ये आपको पहचानते हैं। अल्लज़ीन आतैनाहुमुल किताबा, बेशक वो लोग जिनको किताब दी गई, यारिफूनहू, पहचानते हैं इसको, किसको, दो बातें हैं इसमें, अल्लाह के नबी सल्लम को पहचानते हैं या किबले की तब्दीली के हुक्म की सच्चाई को जानते हैं। कमा यारिफून अबना अहम, जैसे ये पहचानते हैं अपने बेटों को, ये मुहावरा था अरबों में, जब किसी बात का यकीन दिलाना होता तो कहते फलां उसको ऐसे पहचानता है जैसे अपने बेटे को पहचानता है। क्योंकि हम जानते हैं कि माँ जिस तरह अपने बच्चे को पहचान लेती है, किसी और को नहीं पहचानती। नाबीना माँ भी होगी ना, वो भी अपने बच्चे को पहचान लेगी। तो बेटे कहा, बेटियाँ क्यों नहीं कहा? वही बात है कि अब ना में फिर दोनों मौजूद हैं। तकलीफ कसी है, गोया के इनका सब कुछ सुन के भी ना मानना, इसका ये मतलब नहीं कि इनको नहीं पता। ये तो इस नबी को बहुत करीब से जानते हैं कि ये सच्चा नबी है, इस कुरान को भी जानते हैं और इस किबले के हुक्म को भी जानते हैं। इसके बावजूद वइन्न फरीकम मिनहुम, और बेशक एक फ़िरका इनमें से या एक गिरोह इनमें से, लयक्तुमून अलहक्का, अलबत्ता छुपाते हैं हक को। कौन से हक की यहाँ बात है? किबले की तब्दीली का हुक्म या नबी सल्लम की आमद। वहुम यालमून, और वो जानते हैं। तो क्या इनके छुपाने से हक छुप गया? नहीं। अलहक को मेर रब्बिक, हक तो आपके रब की तरफ से है। फला तकूनन मिनल मुमतरीन, बस आप शक करने वालों में से ना हो जाएं। क्या मतलब है? ये ना माने तो इसकी वजह से अब आप ना शक में पड़ जाएं, आप ये मान जाइए कि ये हक अल्लाह की तरफ से है। यहाँ तक किबले की तब्दीली के मौजू को बनाकर जो बातें हमें बताई गईं, वो क्या बता दी गईं? कि किबले की तब्दीली का हुक्म अल्लाह की तरफ से था। क्यों हुआ? ताकि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश पूरी हो जाए, खरे और खोटे का फ़र्क पता चल जाए, और ये पता चल जाए कि जगहों से कुछ नहीं होता। आज इधर मुंह करके पढ़ रहे हैं, कल उधर मुंह करके पढ़ लेंगे। असल बात तो यह है कि पढ़ना और सीखना जिसने है उसको फ़ायदा होगा। और अगली बात इससे पता चल गई कि जब तासुब या ज़िद आ जाती है तो लोग हक को सुनते जानते भी नहीं मान लेते। हमारे लिए इसमें सबक की बात यह है कि फ़िरकाबंदी या ग्रोहबंदी का शिकार होकर असल को नहीं छोड़ना, अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह के दीन को थामना है, नामों के पीछे नहीं जाना, गिरोहों के पीछे नहीं जाना। और ये दुआ करनी है कि जिस तरह सहाबे कराम बात को सुनकर इतनी जल्दी मान जाते थे कि नमाज की हालत में भी पलटने को तैयार थे, तो हम भी अपनी ज़िंदगियों में वही सबमिशन और वही अतात लेकर आएं, ताकि फिर हम भी अल्लाह ताला की जनाब में सुरखरू हो सकें। मुहासबा करते हुए यहाँ तक हम तिलावत सुनेंगे।
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ